मिट्टी की काया को आखिर मिट्टी का मिले बिछोना, ये तन मिट्टी का खिलौना, ये तन मिट्टी का खिलौना। मिट्टी की काया को आखिर मिट्टी का मिले बिछोना, ये तन मिट्टी का खिलौना, ये तन मिट्टी का खिलौना। आभूषण हीरो के और चांदी की सुंदर कड़िया, आभूषण हीरो के और चांदी की सुंदर कड़िया, माणक मोती पन्ने की वे सुंदर लंबी लड़िया, सुंदर लंबी लड़िया। यही रहेगा साथ न जाए भर भी सोना, ये तन मिट्टी का खिलौना, ये तन मिट्टी का खिलौना। घर होगा आखिर मरघट का छोटा कोना, ये तन मिट्टी का खिलौना, ये तन मिट्टी का खिलौना।
ओम शांति। बौद्ध धर्म की एक शाखा ज़ेन जिसको कहा जाता है, उस ज़ेन सिद्धांत का अनुसरण करने वाला एक महान योगी कभी संसार में हुआ था, जिसका नाम था किटानो गेम्पो। उसकी मृत्यु 1933 में हुई थी जब वो 90 वर्ष का था। उसने अपने जीवन कहानी में अपने वैरागी जीवन, अपने योगी जीवन या अपने आश्रम के जीवन के विषय में बहुत सारी बातें लिखी थी। उसमें एक विशेष प्रसंग उसने जो लिखा वो ये था कि जब वो बहुत युवा था और 20 वर्ष का था और यहां वहां घूमता था, धर्म में बहुत अधिक रुचि थी, तो एक बार जब वो घूम रहा था तब उसके साथ एक बहुत सीनियर साधु को योगी का सानिध्य उसे प्राप्त हुआ और उस धर्म में वो लोग ठंड के उस क्षेत्र में हुक्का बीड़ी इस तरह की चीजें पीते, तो वो जो सीनियर साधु था वो पी रहा था तो इसे भी दिया और ये तो युवा था और इसने पिया तो इसको बहुत अच्छा आनंद लगा। और जब आनंद आया तो उसने कहा मुझे और एक दो, तो और देते हैं। और जैसे ये दूसरी बार मांगता है, अचानक उसके मन में विचार आता है कि ये चीज जो मैंने आज पी और जिसे मैं दूसरी बार मांग रहा हूं, अगर इसी तरह मैं इसे चालू रखूं तो ये मेरी आदत बन जाएगी और मेरी साधना में ये बाधा हो जाएगी। और तुरंत वह संकल्प करता है कि मुझे इसे अभी के अभी छोड़ना है, अभी चालू ही नहीं की है पूरी तरह से, तुरंत संकल्प कर लिया कि इसको मैं अभी छोड़ देता हूं, छोड़ दी सदा के लिए। दूसरा अनुभव उसने लिखा है कि वो चीन के किसी आश्रम में रहता था। वो छोटी शाखा थी, बड़ी शाखा थोड़ी दूर थी। और जैसे सभी आश्रमों में होता है धर्म धार्मिक, जो कुछ सप्लाई होता है वो बड़े आश्रम से आता है, मुख्यालय से, छोटी छोटी चीजों के बारे में। उसने लिखा कि मैं एक किताब पढ़ रहा था आइकिंग नाम की, उस किताब में वो सारी विधियां लिखी थी जिसमें अलौकिक शक्तियां प्राप्त की जा सकती है, जैसे किसी को दूर से ही संदेश दे देना, दूर ध्वनि, दूर श्रवण, किसी की बातों को दूर से सुन लेना, थॉट रीडिंग, किसी के मन को पढ़ लेना, इस तरह की विद्याएं उसमें थी। तो उसमें एक दिन उसने लिखा कि मैंने बड़े आश्रम में एक पत्र भेजा कि यहां पर ठंड बहुत है, मुझे कुछ गर्म कपड़े चाहिए। ये छोटी शाखा थी, बड़े आश्रम में खत लिखा, 6 मास हो गए, कोई उत्तर नहीं आया। उसने सोचा कि मैं अपनी दिव्य शक्ति जो मैंने प्राप्त की है, साइकिक पावर्स, मनसा, मानसिक शक्तियां, साइकोलॉजिकल पावर्स, उससे पता करता हूं कि ये खत गया कि नहीं गया। और उसे समझ में आया कि ये खत तो वहां पहुंचा ही नहीं है मुख्य आश्रम में। पर दूसरा विचार तुरंत आ गया कि ये तो चमत्कार हो गया कि मैंने अपने मन की शक्ति से ये जान लिया कि खत वहां गया कि नहीं। इसका मतलब ऐसी बहुत सारी शक्तियां मुझ में है, और इसका मतलब इन शक्तियों का अगर मैं प्रयोग करूं तो ये सारी शक्तियां ही मेरे लिए बंधन बन जाएगी, जबकि मुझे तो यहां साधना करनी है, ना ही चमत्कार दिखाने हैं। अगर मैं इस तरह के चमत्कार करूं तो लोग मेरे पीछे आएंगे, कीर्ति होगी, प्रसिद्धि होगी, लोग अपनी समस्याएं लेके आएंगे, मैं अपने मंत्र मनसा के बल से उनको ठीक करूंगा और फिर मेरी साधना में व्यवधान पड़ेगा। और तुरंत वो विचार करता है कि अब मैं इस तरह का कोई भी प्रयोग नहीं करूंगा, मैं तो साधक हूं, मुझे साधना करनी है, और वो सारी शक्तियों को जैसे वो त्याग देता है। ये दूसरा अनुभव उसने लिखा। तीसरा उसने अनुभव लिखा जब मैं 28 वर्ष का था, पहला 20, दूसरा 23, फिर 28 वर्ष का हुआ। उसने लिखा कि मुझे चीन के जो हस्ताक्षर है, कैलीग्राफी, चाइनीज, उसमें बड़ी रुचि थी और बहुत मैंने अभ्यास किया और मेरे हस्ताक्षर इतने सुंदर हो गए, मेरे अक्षर इतने सुंदर दिखने लगे कि मैं खुद ही उन पर मोहित हो जाता था कि कितनी सुंदर हैंडराइटिंग है मेरी, कितना अच्छे से मैं सब कुछ लिख पाता हूं। और लिखते लिखते एक दिन अचानक उसको लगा कि यहां मैं तपस्या करने आया हूं या कवि बनने आया हूं या कोई कलाकृति दिखाने आया हूं। इस तरह से अगर लिखता रहूं तो मुझ में इच्छाएं उत्पन्न होगी, ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, और फिर लोग मेरे पीछे आएंगे और मेरी साधना रह जाएगी। और तुरंत उस दिन से उसने वो लिखना बंद कर दिया, कैलीग्राफी। ये 3 प्रसंग उसने अपने जीवन के लिखे। जब जब उसे ख्याल आया कि किसी चीज में उसकी आसक्ति हो रही है, जरा भी, उसी क्षण, उसी पल उसने उस चीज का त्याग कर दिया। कोई भी चीज जैसे ही खबर हो जाए, जागरण आ जाए कि ये मुझे अच्छी लगती है आज की मुरली में ही शब्द ही गड़बड़ करता है, ये ही अच्छा है, हीनता का भाव लाता है, ये ही इसी में माया है, सब अच्छे है सब विशेष है, ये ठीक है, पर ये ही। तो जैसे ही मन कहता है कि ये ही चाहिए, ये ही मुझे अच्छा लगता है, ये भाई ये बहन ये वस्तु ये साधन, जैसे ही मन किसी में भी फंसने लगे, मन को कुछ अच्छा लगने लगे, मन प्रभावित होने लगे, झुकने लगे, उसी पल अंदर घंटी बज जाए और उसका तुरंत त्याग कर दे, इससे पहले कि उस जंगल में हम खो जाए। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, मैं लंदन गया और मुझे एक भूत सवार हो गया था जेंटलमैन बनने का, मैंने वहां सबसे छुपाया कि मेरी भी शादी हो चुकी है, और जिस घर में रहता था वो जो गृहिणी थी वो मुझे नई नई कन्याओं से रोज मिलाती थी, मैं मिलता तो था पर कभी बताता नहीं था उनको कि मेरी शादी हो गई है, और वो भी इतनी छोटी आयु में, शर्म आती थी। उन्होंने लिखा कि मैंने अलग अलग चीजें वहां पर ट्राई की, हेयर स्टाइल चेंज की, पैसे खर्च किए, फिर वहां रहकर पता चला कि डांस करना भी आना चाहिए, बिना डांस करे पार्टियों में कैसे जाओ, डांसिंग क्लासेस ज्वाइन की, फिर पता चला फ्रेंच सीखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोप में लंदन के इंग्लैंड के बाजू में ही फ्रांस है और फ्रांस का बहुत प्रभाव है, फ्रेंच की क्लासेस ज्वाइन की, ऐसी बहुत सारी चीजें की, भाषण देना बहुत आना चाहिए, भाषण देने की इलोक्यूशन की क्लासेस ज्वाइन की, और उसकी एक किताब लाई और उस किताब का जो लेखक था उसका नाम था बेल, और उन्होंने वो किताब पढ़ते पढ़ते लिखा कि मेरे दिमाग में बेल बज गई कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं यहां पढ़ने आया हूं, यहां के तौर तरीके सीखना एक बात है पर मैं तो इसमें इतना डूब रहा हूं और मुझे यहां हमेशा तो रहना है नहीं। वो कहता है उस किताब में लिखा है कि ये बेल की किताब पढ़ते पढ़ते दिमाग में एकदम से बेल बज गई कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो जैसे ही खबर हो जाए, जैसे ही पता चल जाए, जैसे ही मन में वो भाव आ जाए कि ये व्यर्थ है, ज्ञान के विरुद्ध है, तुरंत उस चीज का त्याग कर देना। आज सुबह की साका अव्यक्त मुरली में है, किनारा छोड़ दो किनारे हो जाओ। क्या करो, किनारा छोड़ दो। कौन सा उदाहरण दिया, कोई किचन का उदाहरण दिया है, रसोई का, कौन सा, हलवा। हलवा क्या करता है, जैसे जैसे बनना चालू होता है जो वो कढ़ाई होती है, क्या होता है, किनारा छोड़ते जाता है हलवा, मतलब अभी परिपक्व हो रहा है, अभी पक रहा है, अभी मैच्योर हो रहा है, फिर उसे किसी किनारे की आवश्यकता नहीं, पहले तो पूरी कढ़ाई में रहता है पर जैसे जैसे पकता है किनारा छोड़ते जाता है। किनारा छोड़ना, दूसरा शब्द बाबा ने प्रयोग किया है किनारे हो जाना, दूर हो जाना उस चीज से, अलग हो जाना उस चीज से। तो एक है किनारा छोड़ना, दूसरा है किनारे हो जाना, दोनों का अर्थ है हट जाना, अलग हो जाना, दूर हो जाना, डिटैच हो जाना, अनासक्त हो जाना, या चीजों को छोड़ देना, त्याग कर देना। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, हमारा एक मित्र था, वो सुना करता था अपने माताजी के बारे में, उसकी माताजी हर वर्ष में एक तीर्थ यात्रा करती थी और हर तीर्थ यात्रा में एक चीज को छोड़ देती थी जो उसे बहुत पसंद है, जैसे हरिद्वार गई तो जिलेबी छोड़ दी, फिर दूसरे वर्ष काशी गई तो वहां पे समोसा छोड़ दिया। हर साल में एक एक चीज छोड़ती थी, जहां वो जाएगी उस तीर्थ स्थान में जाते ही एक चीज का त्याग कर देती, और त्याग भी ऐसा करती थी कि हमेशा के लिए। कहीं और गई, चाय छोड़ दी हमेशा के लिए, उसके बाद में कभी चाय को हाथ नहीं लगाया। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी आज सुबह की मुरली के अनुसार बहुत सारी चीजों से किनारे हो जाना है, बहुत सारी चीजों को छोड़ देना है। तो ऐसी कुछ बातें हम देखेंगे जिसको हमें भी धीरे धीरे छोड़ते चलना है। कुछ सूक्ष्म बातें हैं, कुछ स्थूल, दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो सबसे पहली चीज छोड़नी है, और जो अति सूक्ष्म है वो है आलस्य। हम स्थूल आलस की बात नहीं कर रहे, सूक्ष्म आलस की बात कर रहे। और ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा आलस्य है मुरली का अध्ययन न करना। पढ़ने की बात नहीं कर रहे, सुनने की बात नहीं कर रहे, मुरली का अध्ययन। अध्ययन अर्थात चिंतन, मनन। बहुत मुरलियां सुनी सुनाई, अध्ययन कितना की, चिंतन कितना किया उसके ऊपर बैठकर। आज की मुरली में है बाबा परिक्रमा लगाते हैं, जैसे तुमने भक्ति मार्ग में परिक्रमा लगाई। आज बाप दादा सभी सेवा केंद्रों की बाबा ने परिक्रमा लगाई, स्थान देखे स्थिति देखी, परिक्रमा चिंतन का विषय है कि भगवान परिक्रमा लगाए तो क्या देखे। सोचो यदि भगवान मेरे घर की परिक्रमा लगाने आ जाए आज शाम को तो क्या देखेगा। घर में क्या क्या चालू है, किचन में क्या है, बेडरूम में क्या है, कैसे रहते हैं, संबंध कैसे आपसी, पवित्रता कितनी है, सब कुछ देखेगा। इंटरेस्ट किस में है, टीवी देखने में इंटरेस्ट है या योग करने में इंटरेस्ट है। अगर भगवान परिक्रमा लगाए, सोचो कि रोज बाबा 24 घंटे में एक बार हमारे घर की, हमारे सेवा केंद्र की परिक्रमा लगाने आता है, और उस वो हमसे कहता है कि मुझे जरा दिखाओ क्या क्या चल रहा है तुम्हारे घर। जब हमें पता होता कोई VIP आने वाला है तो घर को सजाया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है, और फिर हम उसको वो देखना ना भी चाहे तो कहेंगे ये भी देख लो, वो भी देख लो, ये भी देख लो, वो भी देख लो, क्योंकि सब कुछ तैयारी पहले से है। भगवान भी आता है, वो मन के घर में आता है, स्थूल घर में भी आता है, और देखता है कौन सी गंदगी है, कैसी गंदगी है, कितनी गंदगी है, और उसे अपने मन मंदिर, अपने मन के घर को और स्थूल घर को दिखाने में हमें शर्म ना आए। उसके लिए वो घर कितना स्वच्छ होना चाहिए, उसके लिए वो लोग और उनके साथ जो संबंध है वो कितने मधुर होने चाहिए। तो ये था चिंतन। रोज की मुरली से क्या करना है, चिंतन ना करना, ये क्या है, आलस्य। मुरली क्लास में गए, मुरली क्लास में बैठे, मुरली सुनी और घर चले गए, ये है पुरानी चाल। इससे परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा। 10 साल से मुरलियां सुन रहे, डायरिया कितनी भर दी, सारी बातें पता चल गई। बाप आए हैं, तुम्हें पतित से पावन बनना है, तुम्हें अब घर जाना है, तुम्हें दिव्य गुण धारण करने हैं, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, विनाश सामने खड़ा है, सेवाओं में हड्डी हड्डी देनी है, दधीची ऋषि जैसा बनना है, माया बड़ी जबरदस्त है, माया मुंह फेर देती है, अब बाप आए हैं तुम्हें ले चलने, पतित से पावन बनाने, तुम्हें गुलगुल बनना है। कितनी बार सुना है, सुन सुन के क्या हो गया, सुन तो नहीं हो गया, सुनने से केवल कुछ नहीं होगा। ये है पुरानी चाल, अब कुछ और करना पड़ेगा, और वो और है गहन चिंतन। और चिंतन के लिए तीन बातों की आवश्यकता है, एक मौन, एक एकांत और तीसरा अंतर्मुखता। कल की मुरली में वरदान था ब्रह्मा का उदाहरण, कल परसों कि कितना भी व्यस्त होते हुए समय निकाला, लगन है तो समय अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो छोड़नी है, ये सब नए साल के संकल्प के रूप में ले लेना है, पहली चीज जो छोड़नी है वो है आलस और अलबेलापन। मुरली का गहन चिंतन। दूसरी चीज जो जिसमें व्यक्ति आलसी होता है वो है योग, और उसमें भी दो टाइमिंग जो है योग की वो ऑफिशियल है, सुबह और शाम। जो माताएं और बहनें, भाई जो बैठे, ऐसे कितने हैं यहाँ पर कि जिन्होंने एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया पिछले एक मास में? टीचर्स बहने नहीं, माताएं और भाई जो आए हैं, एक दिन भी मिस नहीं किए, बहुत कम। ऐसे कितने हैं जिन्होंने एक दिन भी मुरली मिस नहीं किया एक मास में? इसमें बहुत है, पर बहुत सारे ऐसे भी है जिन्होंने मिस की है। ऐसे कितने हैं जिन्होंने मुरली पढ़ी नहीं, सुनी है पर पढ़ी नहीं पिछले एक मास में, खाली सुनी है बस, पढ़ा नहीं? बहुत कम है। पढ़ना भी है मुरली के साथ, तीन काम करने हैं, एक तो सुनना, दूसरा खुद एक बार पढ़ना, और तीसरा पढ़कर उसका चिंतन करना। खाली पढ़ा या पढ़ाया इससे कुछ नहीं होगा। पुरुषार्थ की परिभाषा जगदीश भाई जी ने एक किताब में लिखी है, पुरुषार्थ अर्थात एक शब्द में परिवर्तन। पुरुषार्थ बहुत किया पर चेंज तो हुए ही नहीं, संस्कार तो वही है, जो अज्ञान में था वो अभी ज्ञान में चल रहा है। पहले उधर आसक्ति थी संसार में, यहां आने के बाद कुछ नई चीजों में आसक्ति उत्पन्न हो गई है, तो वो तो पुरुषार्थ हुआ ही नहीं। तो सबसे पहली चीज जो त्यागनी है वो है आलस। मन को आदत पड़ गई है कंफर्ट जोन में रहने की। कंफर्ट जोन पता है माताओं को, एक सुविधा का क्षेत्र हम निर्माण करते हैं और उसमें रहते हैं, बस सारा जीवन उसी में बिता देते हैं। नए कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहते कि जहां असुविधा है, सोचते बस इधर ही रहो। जो लोग कंप्यूटर लैपटॉप जानते हैं, मोबाइल, उसमें एक शब्द आता है इंस्टॉल, इंस्टॉल न्यू कंफर्ट जोन्स। जैसे कोई ऐप इंस्टॉल किया जाता है, उसी तरह नए कंफर्ट जोन को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, अर्थात ऐसे नए सुविधा के क्षेत्र में प्रवेश करना जो पहले असुविधाजनक है। हर वो चीज जो पहले जहर के समान है बाद में मृत्यु बनती, अमृत बनती है, और जो पहले अमृत के समान है बाद में जहर बनता है, गीता में ऐसा लिखा है। जो भोग विलास जो अमृत जैसे लग रहे बाद में वही भोग विलास विष की तरह हो जाते हैं, और साधना का पथ पहले विष की तरह है बाद में वही अमृत बन जाता है। तो नई आदतें, नए संस्कार इंस्टॉल करने, और उसमें सबसे बड़ी बाधा है हमारे ही मन का आलस। मन कहता है नहीं, जो है वो ठीक है, इसी को चलने दो आराम से, नया कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बाय नेचर मन बहुत आलसी है, उसको जब तक हम कठोर अनुशासन से नहीं चलाते वो वैसे ही आलस रहता है। एक दिन मिल गया, छुट्टी है, क्या सोचता है मन, ऐसे ही समय बर्बाद कर देते पूरा दिन, इससे उससे बात करने में, टीवी मोबाइल में, सोशल मीडिया में, व्यर्थ की बातों में सारा समय गया। कितना समय हर एक के पास है अगर देखे तो पता चलेगा बहुत है। अधिकतर समय व्यर्थ में जा रहा है। कितनी मुरलियों का चिंतन किया? बहुत कम। 69 से लेके तो 2016 तक टोटल 1100 अव्यक्तवाणियां हैं। क्या हमारी सब पढ़ के हो गई? नहीं, एडमिशन इतनी लेट ली है, इतना बड़ा काम बाकी है। इतनी सारी शिक्षाएं हैं बाबा की जो हमें अभी तक पता ही नहीं क्या है। इतनी डीप फिलॉसफी 1970s 80s की मुरलियों में बाबा ने बताई है। मन के हर स्वभाव को, संस्कार को बताया है। ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं बताई। बच्चे क्या क्या सोचते हैं ये भी बताया। लास्ट संडे की जो मुरली थी, व्यर्थ संकल्प वाली, हमारे मन में जो जो संकल्प आते हो सब कुछ उस मुरली में सुनाया है। बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्यों हो गया, करना तो नहीं चाहते थे फिर हो गया, सोचा बहुत अच्छा था पर बीच में माया आ गई, करने के बीच में, सोचने और करने के बीच में कुछ हो गया। तुरंत दान महादान, उसमें बहुत सारा वर्णन है बच्चों के संकल्पों का जो भगवान बैठ सुना रहा है कि तुम ऐसा सोचते हो। मतलब व्यक्ति क्या क्या सोचता है उस थॉट फिलॉसफी के बारे में सारी मुरलियों में चर्चा है, बहुत डीप। परंतु शायद अगर हमने पढ़ी ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। वो हमारी किताब है ना, डायरी। डायरी किसके किसके पास है? यज्ञ की डायरी जिसमें दिनचर्या लिखी है ब्राह्मण जीवन की, है डायरी होगी ना किसी के पास? है अभी डायरी? हाँ, उसमें बीच में क्या लिखा है देखना जरा। 2 बजे सेल्फ स्टडी अर्थात स्वाध्याय, वो इंग्लिश का है, हिंदी में भी दिनचर्या लिखी हुई है बहुत सारी डायरियों में है। यज्ञ की जितनी डायरी है उसमें दोपहर का समय किस लिए लिखा हुआ है? सेल्फ स्टडी अर्थात स्वाध्याय। एक है क्लास स्टडी मुरली, दूसरा है होम स्टडी। स्वाध्याय कितना किया? ज्ञान की ज्यादा बातें सुनाई दो तो एलर्जी हो जाती है, भागते हैं हम लोग। क्यों? कितनी रुचि है उसमें, कितना डीप इंटरेस्ट है उसमें। जितना गहराई से हमको इंटरेस्ट होगा उतने ही बुद्धि का ताला खुलेगा। जितना उसे दूर जाएंगे गलतियां होती रहेगी और फिर सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ज्ञान प्रकाश है। और यदि जीवन में अंधकार अर्थात दुख है, पश्चाताप है, कंफ्यूजन है, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, यहां वहां पूछते रहते हैं केवल, उससे कुछ नहीं होगा। एक ही चीज को लाना है, प्रकाश। और प्रकाश का भंडार है मुरली, ज्ञान। तो सबसे पहली चीज जिससे किनारा कर देना है वो है आलस। और ये 2 चीजें बताई, योग अमृत वेला, नुमा शाम का योग, और दूसरा मुरली का अध्ययन। ये 2 चीजें छोड़नी नहीं है कभी भी। और हमने देखा है जब भी जीवन में परिस्थिति आती है लोग ये 2 चीजों को छोड़ देते, अमृत वेला छूट जाता है और दूसरा मुरली क्लास छोड़ देते, 2 चीजें छोड़ देते। जबकि परिस्थितियों में ही तो इनको ज्यादा पकड़ के रखना होता है, उल्टा करते हैं, सोचते हैं ये थोड़ा हटा के अब परिस्थिति के बारे में सोचेंगे क्या करना है। ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज जो छोड़नी है वो है बहानेबाजी। दादी जानकी की एक क्लास है जिसमें दादी ने कहा था, एक है झूठ बोलना, दूसरा है बहाना बनाना। बहाना बनाना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है, नए नए बहाने। एक बार ज्ञानामृत में एक आर्टिकल आया था, मुरली न सुनने के 108 कारण। कुछ कुछ कारण थे, घर में मेहमान आ गए, बच्चा छोटा है, बारिश आ गई, ढेर सारे कारण, नींद नहीं खुली, ये बनाना था, वो करना था, ऐसे ढेर सारे कारण है। जिसको करना है वो कैसे भी करेगा, जिसको नहीं करना है कितना भी समझाओ, कितना भी बताओ, कुछ ना कुछ बहाना जरूर निकाल लेगा। मन के सूक्ष्म स्वभाव को समझना है कि मन जब उसे नहीं करना होता है तो एक बहाने का वो निर्माण करता है और उसे ज्ञान युक्त और योग युक्त बनाता है ताकि लोग कुछ कहे नहीं, सुरक्षित रहे। जैसे एक आदमी जा रहा है, वो देखता है एक बगीचा है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर मीठे आम लगे हुए हैं। सोचता है थोड़े आम ले लूं और अंदर घुसता है और आम तोड़ना चालू करता है, छुपके से देखता है कोई देख ना ले, माली अगर आ गया तो पकड़ लेगा और उसी दम माली वहां आ जाता है, कहता है तुम पकड़े गए, तुम तो बड़े धार्मिक व्यक्ति हो और तुम चोरी करते हो। वो कहता है मैं चोरी थोड़ी कर रहा था, इतनी तेज हवा बही कि मुझे पता ही नहीं चला मैं इधर फेंका गया हवा की वजह से। तो उस व्यक्ति ने कहा हवा, इतनी तेज हवा वैसे तो इस इलाके में चलती नहीं, चलो मान लिया, पर ये जो तुम्हारे दोनों हाथों में जो आम है उसका क्या? वो कहता है हवा इतनी तेज थी मैंने अपने आप को रोकने के लिए ऐसे पकड़ लिया दोनों आम ताकि मैं रुक जाऊं। वो कहता है चलो ये भी मान लिया, पर ये जो तुम्हारे पास थैला है इसमें आम कहां से आ गए? वो कहता है कि सारे प्रश्नों का उत्तर क्या मैं ही दूं क्या? तो मुझे कैसे पता उसमें कहां से आम आ गए? व्यक्ति नए नए बहाने ढूंढता है, नए नए खोजे करता है, नए नए इन्वेंशंस करता है मन में। अगर कोई पूछे तो ये बताऊंगा, वो पूछे तो वो बताऊंगा। अगर बहन जी ने कहा ये सेवा करो, अगर अंदर से करनी है तो कैसे भी करके करेगा, नहीं तो लंबी लिस्ट है बहानों की। हम निर्माण करते हैं। यज्ञ की शुरुआत में, शुरुआत कहो या बीच में, जब पांडव भवन में आए थे और सेवाएं चली थी और पार्टी आने लगी थी 80s में, यज्ञ में शायद कुछ कमी होगी। दादी जी ने कहा था, माताएं आई थी बहुत सारी, माताओं को कहा था जितना हो सके अगर सेवा कर सको, धन सेवा तो करें। माताओं ने कहा नहीं नहीं दादी, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बहुत गरीब है। ठीक है, वही सारी माताएं शाम में मार्केट से अपनी बहू ननद बेटी सबके लिए कुछ 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 ले लेके आ रही थी। वो सबके लिए सब कुछ है, इधर नहीं है। बहाना बनाना, अमृत वेला क्यों नहीं उठते? रात में लेट सोए, किसने कहा था लेट सोने के लिए? फिर मुरली क्लास, उसके तो बहुत सारे बहाने हैं, अंदर से मन चाहता ही नहीं, सोचते हैं इधर ही पढ़ लेंगे। एक है घर में मुरली पढ़ना, एक है सेवा केंद्र पर बैठना, सुनना या पढ़ना। ये जो वायुमंडल है बहुत प्योर है, यहां की दीवारों में पवित्रता है, प्यूरिटी के प्रकंपन है, संगठन का किला है। इस परिवार के किले के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित है, किले से बाहर विकर्म पाप होते रहेंगे अपने आप, पता नहीं चलेगा क्यों हो रहे। इसके लिए जो नहीं आते 24 घंटे में एक बार इस वायुमंडल में आना जरूर है। कई लोग कई कई दिनों तक नहीं आते। बाबा ने कहा सच बता दो जो है अंदर, बाप मदद करेगा, छुपाओगे तो बीमारी बढ़ेगी, कुछ भी हो कैसी भी हो। तीसरा है जिससे स्वयं को मुक्त करना है, वो है भोग विलास और सुख सुविधाएं। साधना तपस्या है। सुबह भी कहा था हमारा जीवन तपस्वी जीवन है। जो भोग विलास में डूबे हुए हैं वो आदत है, एडिक्शन है, लत है, फिर वही चाहिए। सुबह कहा था 14 बरस राम वनवासी, बाबा ने कहा है तुम वनवाह में हो, तुम्हारा जीवन तापसी जीवन है। हम एक सेवा केंद्र पर गए थे, इतना जबरदस्त तपस्या का वायुमंडल था और वहां की जो निमित्त आत्मा है उनको देखा था, उन्होंने उनका बेडरूम दिखाया था, इतना सादा, उसमें बिस्तर था ही नहीं, चटाई थी बेड पर, उसी पर सोते थे। हम एक दूसरे सेवा केंद्र पर गए थे, वहां पर वो भाई बता रहा था कि ये सेवा केंद्र 30 साल से है और मैंने 30 साल में एक भी विघ्न नहीं देखा यहां पर। हमने कहा ऐसा क्या विशेष है? उस भाई ने कहा कि यहाँ के सभी स्टूडेंट्स इतने धारणा युक्त है, और उसने यहां तक कहा कि हमारी जो बहन जी है उसको इतने सालों में मैंने कभी भी अमृत वेला योग कभी सुना नहीं, उन्होंने मिस किया। दुमा शाम का योग होता ही होता है, पूरा वायुमंडल ही योग युक्त है। और तपस्या की वायु वाइब्रेशन से तो टू मच सुख और सुविधा है, तपस्या को अपने आप कम कर देती है। वो अगर है तो ठीक है, पर उनके प्रति भी अनासक्त, सब कुछ करते हुए रहते हुए मन तपस्वी रहे, चाहे वो पहनना है कपड़े हैं, चाहे भोजन है, चाहे दूसरी चीजें हैं, सभी चीजों में क्या हो, सादगी। जहां पर भी गरिष्ठता है वहां पर, जहां भोग विलास अधिक है वहां पर धीरे धीरे तपस्या न चाहते हुए भी आपे ही कम होती जाती है, क्योंकि वहां लक्ष्य तपस्या नहीं रहता है, फिर कुछ और रहता है। तो सिंपल, हमारे वस्त्र भी कैसे हो, कैसे होने चाहिए, सिंपल, और कैसे होने चाहिए, सादा, और कैसे होने चाहिए, स्वच्छ, और कैसे होने चाहिए, फटे हुए नहीं, और कैसे होने चाहिए, जितना हो सके क्लासरूम में, भट्टियों में श्वेत, श्वेत ही परिधान हमने धारा है, ये वस्त्र हमारे सुरक्षा कवच है, प्यूरिटी का प्रतीक है। टाइट ना हो, ढीले हो, पुरुषों के, स्त्रियों के कपड़े पुरुषों जैसे ना हो, भड़कीले ना हो, भड़काऊ ना हो, और दाग धब्बे ना हो, जितना हो सके स्वच्छ। तो सब कुछ सिंपल, दिखावे वाले ना हो। हम हमेशा उदाहरण देते हैं विनोबा भावे, जो कि ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक महिला को देखा, उसने गजरा लगाया था, गजरा पता है ना, उन्होंने पूछा ये गजरा, तुमको दिखता है क्या? उसने कहा नहीं, तो क्यों लगाया फिर? ये गजरा तुमको दिखता है क्या? उसने कहा नहीं दिखता है। किस लिए लगाया है फिर? किस लिए लगाया है? दूसरों को आकर्षित करने के लिए, दिखाने के लिए। हमारा कुछ भी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ना हो, प्रभावित करने के लिए। हमें एक ही चीज से संसार को प्रभावित करना है, और वो है अपने अखंड ब्रह्मचर्य से, अपनी पवित्रता से। और कोई दूसरा आधार ना हो संसार की आत्माओं को प्रभावित करने का। अगर हम भी वही करने लगे जो संसार के लोग करते हैं, तो हम में और उनमें क्या भेद, क्या फर्क, क्या अंतर? तो तीसरा जो सूक्ष्म बंधन है वो है सुख और सुविधा है। चौथा डिजिटल माया। डिजिटल माया था ये वाली माया, सबसे बड़ी माया है। मोबाइल जैसा सेवा का साधन इस संसार में शायद कौन सा होगा पता नहीं, बहुत उपयोगी है। अगर कोई चाहे तो ये सेवा का सर्वोत्कृष्ट साधन है। कितने लोगों को एक साथ मैसेज भेज दो आ जाए, कितनी सेवा इससे हो सकती है। इससे मुरली पढ़ी जा सकती है, मुरली सुनी जा सकती है, क्लासेस सुन सकते हैं, फोन पे बात हो सकती है, मैसेज भेज सकते हैं, नई चीजें पता चलती है। परंतु यही सबसे बड़ी माया भी है, आग की तरह है। रोटी भी पकाती है तो आग घर को जला भी देगी, पूरा भस्म कर देगी। सबसे बड़ा एडिक्शन भी यही है। एडिक्शन अर्थात लत, आदत। तो इन सभी चीजों का प्रयोग ज्ञान के लिए, योग के लिए और सेवा के लिए हो बस। इसके अतिरिक्त अगर इसका प्रयोग किया जा रहा है, फोन पर लंबी लंबी बातें, प्राइवेट टॉक्स, गुप्त वार्ता, गुह्य भाष्य, आसक्ति, लगाओ, मैसेजेस, सब वेस्ट है। क्यों लंबी लंबी बातें? 3 मिनट बात कर लिया बस, उससे ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, वो सेवा का कोई बात है, सेवा का कोई समाचार सुनाना है तो ठीक है, नहीं तो इधर की खबर उधर, क्या करेंगे कोई मनुष्य जानकर। और एक सूक्ष्म बात, जितना मनुष्यों से शेयर करेंगे उतना भगवान से शेयर करना कम होते जाएगा धीरे धीरे। कोई घटना हुई, यहां से हमने फोन किया किसी भाई को, वो उधर मधुबन में बैठा है, वो क्या करेगा? वो किसी सेवा केंद्र पर बैठा है, वो क्या करेगा? सुन लेगा, हम सोचेंगे वो मदद करेगा। इधर सब कुछ सुना दिया, योग में भगवान को क्या सुनाएंगे, कम सुनाएंगे। अपनी सारी राम कहानी एक को तो सुना दी, देहधारी को, अब उसको क्या सुनाएंगे, कम सुनाएंगे उसको। इसलिए ये माया ना बन जाए, आसक्ति का केंद्र ना बन जाए, किसी देहधारी से में फंसने का कारण ना बन जाए। यह भी क्या है, एक माया। इस ब्राह्मण जीवन में आज तक सुबह की अव्यक्त वाणी बाबा ने कहा सूक्ष्म परखने की शक्ति चाहिए। जितनी बुद्धि सूक्ष्म होगी उतनी परखने की शक्ति सूक्ष्म होगी, जितनी बुद्धि स्थूल है वो परख नहीं सकेगी कि मेरे जीवन में ये माया, इसको हटाना है, इससे मुक्त होना है मुझे, यही माया है। अब तक उसको समझ रही है ये माया नहीं है, ये माया नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। जैसे महाभारत का उदाहरण है, धृतराष्ट्र कहता है कि अब मेरा दुर्योधन के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, वो कहता है कि मुझे अगर राज्य नहीं दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो क्या मेरे पिता होने की हैसियत से मैं दुर्योधन के लिए कुछ नहीं करूं, मरने दूं उसको, मैं उसका पिता हूं, मेरे साथ तो अन्याय हुआ ही है, क्या उसके साथ भी अन्याय होने दूं, ये राज्य उसका है ना कि पांडु पुत्रों का, मैं ज्येष्ठ हूं तो मेरे ज्येष्ठ पुत्र का ही ये राज्य होगा, होना चाहिए, क्या मेरा उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। विदुर से पूछता है धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र कहता है महाराजन दुर्योधन आपका कर्तव्य नहीं, आपका रोग है, कर्तव्य नहीं है वो, रोग है, रोग बीमारी है तुम्हारी, जड़ से फेंक दो, हटा दो उस बीमारी को, कर्तव्य तो था ही नहीं, वो कर्तव्य जो करना था कर लिया। मां बाप बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, बेटा अभी पहले ज्ञान में चलता था, अभी ज्ञान छोड़ दिया, अभी दारू पीता है, क्या करें, पहले बेटी ज्ञान में चलती थी, अभी कुसंग में चली गई, अभी कहती है मुझे शादी करनी है, क्या करें। हर एक का अपना अपना भाग्य है, सारे साधनों का प्रयोग करना है, परंतु उसकी आसक्ति से परे, डिपेंडेंसी ना हो, उसमें निर्भरता ना आ जाए, वो है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, इतनी बेचैनी ना हो। और हम जो बात कर रहे थे दूसरों के विषय में, हम किसी को भी इस संसार में जबरदस्ती कुछ भी नहीं करा सकते। एक परिवार था, माता पिता, उनका बेटा था, उसे ज्ञान बिल्कुल पसंद नहीं था, माँ बाप चाहते थे कि वो ज्ञान में चले और जबरदस्ती लेके आए, कई सालों पहले, बहुत सालों पहले हॉस्पिटल में रखा, फार्मेसी डिपार्टमेंट में, वो फार्मासिस्ट था, उसको वहां रख दिया ताकि थोड़ा संघ का रंग लग जाए, ब्राह्मणों के संग रहे, मधुबन में रहे, पर वो तो ऐसा पावरफुल था कि बाहर से नॉनवेज फूड लाके उधर खाता था, इधर का नहीं खाएगा, ब्रह्मा भोजन से उसे बस नफरत थी, बाहर का लोर ला ला के खाता था। माँ बाप तो चाहते थे कि बेचारे का कल्याण हो जाए, पर सब कुछ हमारी इच्छा से नहीं होगा, जिसको जब आना है तभी वो ज्ञान में आएगा। शांतिवन में एक भाई था, उसने अपने लौकिक भाई को बुलाया ताकि थोड़ा सा ज्ञान का असर हो जाए, तो वो लौकिक भाई तो पहले दिन शांतिवन के अंदर ही रहा, बाकी अगले चार दिन शांतिवन के बाहर ही घूमता रहा, कहता था जो भी मिलता है वो एक ही चीज बोलता है, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, पकड़ पकड़ के सुनाते एक एक, कोई नहीं छोड़ता, पूरा ज्ञान जब तक नहीं सुना देते छोड़ते ही नहीं, बहुत जबरदस्त लोग है ये, सुबह बाहर निकल जाता था, रात को ही आता था अंदर। अगर उनसे कहो कि हमने ज्ञान अभी भी सुन के आए उधर से, वो कहते सुना होगा, मैं सुनाता हूं, हमें भी तो अपनी प्रजा बनानी है, फिर से पूरा। और ट्रेन में बाबा कहते सेवाएं करो, बहुत अच्छी बात है, पर सेवा ऐसी बेरहमी से करते हैं ट्रेन में, एक घंटे के अंदर आत्मा से चालू करते और ब्रह्मचर्य में ही एंड करते पूरा, बेचारा सामने वाला इतना दुखी और उदास हो जाता है, प्लस उसको एड्रेस भी देते हैं कि जरूर जाना यहां पे, और गए तो फोन करके बताना तुम गए थे। एक घंटे में आत्मा परमात्मा तीन लोक सृष्टि चक्र 5000 वर्ष ब्रह्मा उसका जीवन सब कुछ, बेचारे संसार के दुखों से पहले परेशान है और अभी बता दिया ब्रह्मचर्य, तोड़ा तो देखना, और ज्यादा दुखी, रहम करते पर बेरहमी से रहम करते। बाबा ने कहा नब्ज देख कर ज्ञान दो। एक भाई ट्रेन से जा रहा था, उसको कहा कि तुम ट्रेन में सेवा नहीं करते, वो कहता है मेरे पास रत्न है, पत्थर पे नहीं फेंकूंगा। देख के सेवा करूंगा, किसको सुनाना है किसको नहीं सुनाना है, ऐसे फेंक दूं क्या? तो ये माया ना बन जाए, लंबी लंबी बातें, ये सोचता है मैं उसकी समस्या हल कर दूं। सभी उत्तरों का सागर एक परमात्मा है। उत्तरों का सागर कौन है? परमात्मा। सभी समाधानों का सागर एक परमात्मा है, ओशन ऑफ आंसर्स है वो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, हजार भुजाओ वाले को छोड़कर दो भुजाओ वाले के पास जाते हो, कारण बताओ क्यों? मैं खड़ा हूं यहां तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, फिर भी मुझे छोड़कर देहधारियों के पास जाते हो, कारण बताओ क्यों? बाबा के महावाक्य। तो ये माया ना बन जाए। गुह्य भाष्य, गुप्त भाष्य, प्राइवेट टॉक्स माया का रूप है। सभी अच्छे हैं आज की मुरली में, ही शब्द गड़बड़ कर, सब अच्छे। ये ज्यादा अच्छा लगता है, ये ज्यादा प्रिय लगता है, इसमें ज्यादा गुण है। हमेशा हम उदाहरण देते हैं, दादी जानकी ने अपना जो अनुभव कभी सुनाया था, किसी भाई का कोर्स कराया, ब्रह्मा बाबा के पास पहुंची और बाबा से कहा, बाबा ये भाई बहुत ही अच्छा है, ये इस परिवार का है। एकदम पूरा कोर्स सुन लिया और एकदम धारणा युक्त है बाबा, इसको एकदम तीर लग गया। बाबा ने कहा, तीर उसको लगा या तुमको? कोई ज्ञान में अच्छा चल रहा है ठीक है, हम क्यों प्रभावित हो जाए? हम अगर प्रभावित हो जाए तो वो जब छोड़ देगा तो दुख होगा। यदि हम में ये भाव है कि इसको हमने लाया, इसको हम मधुबन ले गए, इसको कोर्स हमने कराया था, तो फिर उसके साथ जो कुछ होगा वो उससे हम जुड़े रहेंगे। चार दिन से मुरली में ही नहीं आया, कहाँ चला गया? शुभ भावनाएं अच्छी है पर सुबह की मुरली के आधार से ये भी लगाव है और फिर झुकाव है और ये भी सहारा है। बुद्धि उसमें गई, और अगर वो ज्ञान छोड़ ही दे अचानक तो फिर तो पहाड़ टूट पड़ेगा, ये क्या हो गया? जिसको आना है वो आए, जिसको जाना है वो जाए। भगवान का यज्ञ, हजारों यहां आए, हजारों यहां से चले गए। जिनको बाबा ने हिस्ट्री हॉल में 10-10 मिनट टाइम दिया, सामने बिठाया और बात की डायरेक्ट, वो सब कितने ज्ञान छोड़कर चले गए। क्या भगवान को पता नहीं था जिससे मैं बात कर रहा हूं ये एक दिन ज्ञान छोड़ के जाने वाला है? फिर भी बात की, क्योंकि वो साक्षी है, सबके पार्ट को जानता है। हर एक उतना ही लेगा जितना उसका भाग्य है, और उतना ही समय यज्ञ में रहेगा जितना उसका भाग्य है। भाग्य पूरा हुआ यहां से निकल जाएगा। कितने कुमार थे पहले, बहुत शक्तिशाली पावरफुल कुमार थे, बाद में चतुर्भुज बन गए। और फिर कहते हैं हम लोग गए किस लिए संसार में, ये जो बच्चे हैं ना इनको लाने के लिए, इनको भी तो बाबा का ज्ञान मिलना चाहिए। अब पूरा परिवार ज्ञान में चलता है, पहले अकेले चलते थे तो कुमार जीवन और गृहस्थ जीवन दोनों का अनुभव है। वो कहते हैं हम ज्यादा अनुभवी है, और कोई कोई पहले कुमार थे फिर गृहस्थी बने, बच्चे हैं अभी, ज्ञान योग करते नहीं है, पर कहते ये बच्चे भी शिव बाबा के ही है। ये भी माया है, और ये इसके लिए बहुत बड़ा कारण है। सारा कॉन्टैक्ट्स, फोन पर बातें, मैसेजेस, सब इससे हुआ है। क्यों कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने? गए सेवा की और आ गए, बस खत्म, फुल स्टॉप। कैसे हो, क्या कर रहे हो, लंबी लंबी बातें, और बोलो क्या चल रहा है। काम वाली आई कि नहीं आई, मौसम कैसा है, ठंड कितनी है, भालू मिला कि नहीं आज, माउंट की बातें, आज इधर 2 डिग्री है, आज उधर 0 डिग्री है, 1 घंटा उस पर डिस्कशन चालू है, पॉलिटिक्स पर डिस्कशन चालू है, व्यर्थ। उसके बाद में अगली सूक्ष्म चीज फैशन। फैशन इसमें बहुत सारी बातें आती है। गहने, हमारा गहना पवित्रता है। टैटू करते हैं, रंगीन रंगीन कपड़े, बालों को काला करते हैं, पाउडर, सेंट। हम बीके परिवार की बात कर रहे हैं। सुबह सुबह हम लोग उधर कुटिया में बैठते हैं बाबा की, अचानक कोई आ जाता है, इतनी सुगंध, इतना सेंट लगा के, कोई सूक्ष्म वतन से धड़ाम से नीचे गिरता है, कोई परमधाम से गिरता है, ये कौन आया महफिल में, महफिल में जल उठी शमा, कौन है, सब देखते। सुबह 3 बजे 2 बजे सेंट लगाकर, और बड़ी स्ट्रांग सेंट, तपस्या करने के लिए, धाड़ धाड़ गिरते होंगे सूक्ष्म वतन से, पहले तो बड़ी मुश्किल से चढ़ते हैं, इतनी ठंड में चढ़ने को भी टाइम लगता है, रजाई से निकलने में कितना टाइम लगता है, साज श्रृंगार, वाइट, वाइट में भी फैशन अलग अलग। हमारा श्रृंगार प्यूरिटी है, ये सब चीजें हमारा श्रृंगार नहीं है। मुरलियों में उदाहरण आया है, एक ही बार 5 वर्ष की जो मुरली है उसमें एक मुरली में उदाहरण है पारसी स्त्रियों का। वो स्त्रियां जाली लगा लेती है मुख पर ताकि कोई लट्टू ना हो जाए उनके पीछे। एक मुरली में ये साकार महावाक्य है बाबा की, आएगा अभी कुछ दिनों में। कोई हमारी देह की तरफ आकर्षित हो रहा है, अर्थात सूक्ष्म में हम में ही अपनी देह का आकर्षण है। बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है, हम में ही, हम ही अपनी देह से आसक्त है, इसलिए किसी और की आसक्ति हो रही है हमारे शरीर में। वो राह चलता व्यक्ति हो सकता है या पति या पत्नी या सेवा साथी, कोई भी। एक बहन ने अपना अनुभव लिखा है जो अभी सेवा केंद्र की इंचार्ज बहन है, बहुत बड़ी बहन अभी भी है। उन्होंने लिखा कि जब मैं युवा थी, एक बार सेवा करने गीता पाठशाला गई और वहां लेट हो गया, 11 बज गए और आने के लिए कोई साधन नहीं था, तो फिर खड़ी थी, कुछ नहीं मिल रहा था और एक ट्रक गुजर रहा था, ट्रक में ड्राइवर था बस, और कोई नहीं था, या और भी कोई पीछे होगा साथी। तो उसने कहा कि मुझे वहां छोड़ दो। उसने कहा हाँ बहन जी, आइए आइए बैठिए। बहन बैठ गई, रात का समय और ट्रक चालू। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ रहा था, वो जो भाई था ड्राइवर, दृष्टि वृत्ति सब बदल गई उसकी और कुछ और सोचने लगा, और जिस रास्ते से जाना था उस रास्ता छोड़कर कहीं और लेके जाने लगा तेजी से, सुनसान रास्ता। और ये बहन को एकदम से पता चला कि ये रास्ता तो गलत रास्ता है, ना साइन बोर्ड है, अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता है, केवल ट्रक जा रहा है सुनसान रास्ते से, और उस भाई ने मार्ग बदल दिया है, जहां जाना था वहां नहीं। उसने एकदम से बाबा को याद किया, कौन उसकी मदद कर रहा है, यहां कोई भी नहीं था मदद करने के लिए, कहां चिल्लाती पुकारती, तेज था वह ट्रक। और ऐसा याद किया, इतना तेज इतना तीव्रता से याद किया और फिर एकदम से उसके मन में ख्याल आया, मैं शिव शक्ति दुर्गा हूं। शिव की जो शक्ति है वो मैं हूं, उसकी सारी शक्तियां मुझ में हैं। और वो रूप ऐसा उसने प्रकट किया, उससे कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप अपने सामान में और स्थिर हो गई। और अचानक वो ड्राइवर को कुछ कुछ होने लगा, उसे लगा जैसे कोई देवी बैठी है बाजू में। और एकदम से वो रुक गया, उसका ट्रक रोका और फिर एकदम से उसके चरणों में गिरा और माफी मांगने लगा कि बहन मुझे माफ कर दो। और फिर उसको वहीं छोड़ दिया जो उसका सेंटर था। रात को 12 बज गए थे लगभग। तो हमारा परिधान पवित्रता है, समान हमारा श्रृंगार है, उसके बाद में अगला भोजन। भोजन के लिए 7-8 बातें हैं। सबसे पहला, भोजन जो बन रहा है किस पैसों से आ रहा है? वो किसी का शोषण करके आ रहा है, काला है या सफेद है? भोजन जो पैसे कमाए जा रहे हैं वो याद में कमाए जा रहे हैं या फिर बस पागलों जैसे भाग रहे पैसों के पीछे, सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हैं, पैसा 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 और कुछ नहीं, बुद्धि में बस पैसा ही घूमते रहता है। सुबह बताया था, बाबा झाझा, बाबा झाझा, बच्चा झाड़ू चबा रहा है, पहले उसको हटाओ, यही बुद्धि में घूम रहा है। तो पहली बात। दूसरी, जो भोजन खा रहे हैं वो भोजन सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है, जिसमें अत्यंत गरिष्ठ है, अत्यंत मसाले और बहुत ज्यादा तीखा है या बासी चीज है, वो सब तमो में आएगा, रजो में आएगा। बाकी स्थूल धारणाएं तो सबकी है ही, प्याज लहसुन या नॉनवेज। एक परिवार था, नया नया ज्ञान में आया था, हंसी की बात है, किसी शादी में गए, कोई रिश्तेदार की शादी थी या रिसेप्शन था, रेस्टोरेंट में था, और वो जो भाई था परोसा गया समोसा। तो उन्होंने क्या किया, समोसा को तोड़ा और जो आलू थे अंदर के उसको बाहर किया। उसको कहा, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, बाहर की चीज नहीं खाते हम, अंदर की चीज खाते बाहर की चीजें हम नहीं खाते, कौन सी चीज खाते? अंदर वाली। वो दूसरी बात भोजन की। तीसरी बात, भोजन बनाते समय मन की स्थिति क्या है, किस भाव से बनाया जा रहा है? कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, जो इस भोजन को खाएगा उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, ये भावना हो। घर के जितने लोग हैं, बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा भोजन वो एक अस्त्र है जिससे हृदय शुद्ध होता है, उसमें दवा भी है दुआ भी है, इसमें दोनों चीजें हैं उसमें। अगला भोग। कितनी माताएं रोज भोग लगाती है? लगभग सभी। और जो नहीं लगाते हैं, नए वर्ष के लिए ये संकल्प लेंगे कि 24 घंटे में एक बार भोग लगाना ही है। और जो भोजन नहीं बनाते भाई, वो भी भोजन से पहले भोजन को दृष्टि देकर बाबा की याद में भोजन से खा करें भोग। उसके बाद में अगली बात, भोजन के संबंधित ओवर ईटिंग। जब भूख है तभी खाना है, जब भूख नहीं है छोड़ दो। अगला, मन की स्थिति भोजन करते समय, खुशी खुशी से खा रहे हैं या कंप्लेंट के साथ खा रहे हैं, दुखी हो के खा रहे हैं, असंतुष्ट भाव से खा रहे हैं। मधुबन में लोग आते हैं, किचन में जाते जैसे देखते हैं भूख खत्म हो जाती है, कई बार कहते हैं आज भूख नहीं है और कुछ दूसरा आ गया तो फिर भूख जागृत हो जाती है। पसंद वाला आ गया तो भूख है, पसंद का नहीं है तो आज मूड नहीं है, टेस्ट के गुलाम है। उसके बाद में वो सारा भोजन जो उत्तेजना उत्पन्न करे उसको अवॉइड करना, उसके बाद में वो सारा भोजन जिससे आलस प्रमाद और निद्रा आए वो सारा अवॉइड करना। इतना खा लिया कि बस अब सोने की इच्छा होती है, अमृत वेला गया, उठे तो 5 बज गए, सोचते बाबा ने तो कहा ही ना सारा संगम योगी अमृत वेला, कहीं से भी चालू करो। इसको कहते हैं सुविधाजनक श्रीमत, फिलॉसॉफी ऑफ कन्वीनियंस, अपने हिसाब से श्रीमत को थोड़ा ठीक ठाक करना। तो हम थे भोजन पर, भोजन बनाने की प्रक्रिया और खाने की प्रक्रिया दोनों ही तपस्या बन जाए। जो रोज भोजन बनाते हैं वो भोजन बनाना क्या हो जाए, तपस्या। एक एक चीज जो डालते हैं उसमें वो बाबा की याद में दृष्टि देते हुए उसको डालना, ताकि वो पूरा भोजन योग युक्त हो जाए, पावरफुल हो जाए। और किसी के भी हृदय तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है, भोजन नहीं पेट, इधर पहुंचना है ना, तो कहां से पहुंचेंगे, पेट से। भोजन से खुश कर दो अपने आप आदमी पिघल जाता है। उसके बाद में अगली बात जिसका किनारा छोड़ना है वो है गॉसिप्स। गॉसिप्स अर्थात क्या कहते हैं हिंदी में, झगमोई झरमोई, झगमोई झरमोई क्या होती है, माताएं बताएंगी ना, व्यर्थ बातों का क्या, व्यर्थ बातों का क्या। एक मंदिर का पुजारी सो रहा था और जब उठा तो देखा उसके मुंह में एक पंख है, कहीं से गिरा होगा पंख। वो घर ले आया, पत्नी को बताया, मैं जब सो रहा तो देखा एक पंख था मुंह में। उसने पत्नी ने कहा यह तो कबूतर का पंख है, यह तो बहुत ही अशुभ हो गया, यह कोई अच्छी बात नहीं है। पति ने कहा अच्छा, पर यह बात तुम किसी को बताना मत। पत्नी ने कहा ना ना ना, ये तो घर की बात है, ऐसी बात थोड़ी ना बताई जाती है। रात भर पत्नी परेशान, किसको बताऊं किसको बताऊं किसको बताऊं किसको बताऊं, नहीं बतानी है नहीं बतानी है नहीं बतानी है। सुबह उठते ही पड़ोसिन के घर गई और बताई कि तुमको पता है कि हमारे पतिदेव सो रहे थे तो जब उठे तो कबूतर का पंख था मुंह में। उसने कहा अच्छा। इस बहन ने कहा कि पर यह बात किसी को भी बताना मत। वो पत्नी दूसरी जो पड़ोसिन थी दिन भर परेशान रही जब तक उसका पति घर पे नहीं लौट गया है शाम को, और उसने कहा कि हमारे जो पुजारी जो है ना बाजू के, वो जब सो रहे थे तो पंखों का गुच्छा निकला उनके मुंह से। पर ये बात तुम किसी को भी बताना मत, ये अपने ही तो पड़ोसी है आखिर। पति भी परेशान रात भर, दूसरे दिन अपने काम काज में गया, वहां पे उसने बताया हमारे जो पुजारी जो है ना सोए थे तो उनके मुख से एक कबूतर निकला। और धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई कि हमारे जो पड़ोसी पुजारी है उनके मुख से अलग अलग प्रकार के पंछी निकलते हैं, और सारे भीड़ इकट्ठी हो गई पुजारी के घर के सामने, हमें भी देखना है कैसे निकलते हैं पंछी। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, उसने कहा नहीं है हमें देखना है, हम तब तक जाएंगे नहीं, रात फिर रात घर गांव छोड़ना पड़ा। एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, तीसरे ने चौथे को कहा, और बातें बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और कहां से कहां पहुंच गई। अंग्रेजी में इसको कहते हैं द चाइनीज विस्पर, झगमोई झरमोई, तुमको पता है यहां ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, उनको पता है उनके घर में झगड़ा हुआ, अरे क्यों हुआ झगड़ा, क्या क्या और क्या क्या कहा फिर उसने, फिर उसने क्या कहा, फिर उसने क्या कहा, फिर इसने क्या कहा, फिर उसने क्या कहा, पूरी खबर ऐसी टोली है बदी हुई लोगों की दो तीन। आज का ब्राह्मण संसार समाचार, सनसनीखेज खबर। ये माता पहले ज्ञान में आती थी, अब उसने छोड़ दिया है, क्या कारण है ढूंढो। पता चला वहां पर झगड़ा हुआ है, एक क्या झगड़ा हुआ, किसने किया, एक घंटा चर्चा। आप कल फिर मिलेंगे इसी समय नई खबरों के साथ। तुमको पता है उस सेवा केंद्र पर ऐसा हुआ, अरे तुमको कुछ भी नहीं पता रहता है बुद्धू। मधुबन जाके आया और मधुबन की ये खबर तुमको पता ही नहीं, कमाल है, क्या करते हो वहां जाके। हम देखो एक दिन के लिए मधुबन जाते हैं, तीनों स्थानों की फुल समाचार हमारे पास है, ज्ञान सरोवर में क्या हो रहा है, पांडव वन में क्या हो रहा है, शांति वन में क्या हुआ। वो भाई पहले वो डिपार्टमेंट में था, अब उसको वहां से निकाल के उधर भेज दिया, और डिटेल चाहिए हो तो बैठो। पूरी डिटेल फुल इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हर चीज का पता है, कहां किस सेवा केंद्र पर कौन सी बहन कहां थी, क्या हुआ ये माता का, क्या हुआ उस घर में, कौन से झगड़े चालू है। वो कुमार पहले ज्ञान में चलता था, अभी शादी करने की सोच रहा है, सारी खबरें हैं। व्यर्थ अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जितनी खबर व्यर्थ होगी उतनी इंटरेस्टिंग, जितनी खबर इंटरेस्टिंग होगी उतनी वो व्यर्थ होगी। 31 दिसंबर 1995 अव्यक्त मुरली। जितनी न्यूज इंटरेस्टिंग है अर्थात वो क्या है, व्यर्थ, स्पाइसी, चटपटी चटपटी खबरें, इधर ये हुआ उधर वो हुआ, अरे तुमको क्या करना है, किधर क्या हो रहा है। बाबा के महावाक्य, इस संसार का ठेकेदार मैं हूं तुम नहीं, मैं देखूंगा क्या करना है किसका। इंग्लिश में कहावत है, इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड रिजाइन एज द जनरल मैनेजर ऑफ यूनिवर्स। अगर तुमको मन की शांति चाहिए, ये जो जनरल मैनेजर बन के बैठ गए हो ना, रिजाइन कर दो इससे। तुम नहीं कंट्रोल करना है, तुमको नहीं कंट्रोल करना है दूसरों को, ये ऐसा क्यों करता है वैसा क्यों करता है, इसने ये क्यों किया उसने वो क्यों किया। तो गॉसिप्स, इससे अपने आप को हटाना है। ये नए साल का संकल्प, सारा स्व केंद्रित पुरुषार्थ, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों ने क्या किया, उनके जीवन में क्या चालू है, इंटरफियर नहीं करना है, माइंड योर ओन बिजनेस। ये ब्राह्मण जीवन का एक नियम है, अपने काम से काम रखना है। आए सेवा केंद्र पर, मुरली सुनी, सबसे बात किया, ये किया, चले गए। फिर वहां ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है, ये क्यों करते वो क्यों करते, इसने ये क्यों किया उसने वो क्यों किया, ये सब में डिटेल में और व्यर्थ में जाना ही नहीं, क्योंकि इससे झरमुई जगमुई व्यर्थ प्रलाप होगा, बातें होगी फोन पर, मैसेजेस होंगे, चिंतन चलेगा, योग टूटता रहेगा, बाबा से कहां जुड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो किनारा कर देना है ये सब बातों से। उसके बाद में अगली पॉइंट है फैमिलैरिटी। फैमिलैरिटी, किसी से बहुत ही ज्यादा घनिष्ठता, दोस्ती बढ़ा देना, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, अरे अच्छी है तो ठीक है, क्या करना है, पूजा करनी है क्या उसकी। मुरलियों में आता है बाबा ये बहन बहुत मीठी है, बाबा ये बहन बहुत अच्छी मुरली सुनाती है, बाबा इसकी आवाज बहुत मीठी है। बाप कहते हैं बच्चे मीठी बहन नहीं, मीठी मुरली है। वो बहन मुरली सुनाती थी, कहां चली गई, तीन दिन से नहीं दिखाई दे रही, ये कौन आ गई छोटी बहन, हमको तो वो चाहिए। दोस्ती, फैमिलियरिटी, घनिष्ठता, बातें, बाबा ने कहा ये सब अवॉइड। काम से काम, सेवा केंद्र पर गए, सबकी सेवा की, जो सेवा कही गई वो की, वो अपने मार्ग, हम अपने मार्ग, अलग। फंसना नहीं है किसी में, रहते यहां है वो वहां रहता है, हम यहां, उसको क्या बताएं यहां क्या चालू है, फोन पे व्यर्थ का डिस्कशन। और जब भी परिस्थिति आएगी वही व्यक्ति याद आएगा, फिर बाबा याद नहीं आएगा। जिसको सहारा बनाया है तिनके का सहारा, पर वही याद आएगा कुछ भी होता है तो। उसके बाद में अगला है पद। पद इस यज्ञ में हरेक पद है, ये इंचार्ज, वो उसके ऊपर, वो उसके ऊपर, वो उसके ऊपर, और हम सब सेवाधारी है, सेवाओं के निमित्त है। कौन किस पद पर है इसका, इससे सतयुग के पद का आधार नहीं है, इसलिए उसका पोस्ट के पीछे भागना नहीं है। ये तो संसार में भी करते हैं ना लोग, कुर्सी के पीछे तो सारा चक्कर है। उसके बाद है धन। धन बहुत जरूरी है, सेवा का साधन है, पर धन के पीछे पागल नहीं हो जाना है। इतना पीछे है उसके, इतना पीछे है कि बुद्धि में केवल पैसा ही घूमते रहता है दिन रात। सूक्ष्म बात है, जिसके पास ज्ञान धन है उसके पास स्थूल धन अपने आप आएगा। ज्ञान धन को बढ़ाना है, ज्ञान धन स्थूल धन को खींचेगा, आपे ही खींचेगा। नहीं तो स्थूल धन होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं कर सकेंगे और वो चला जाएगा। लक्ष्मी बहुत चंचल है, हाथ में नहीं रहती है किसी के भी, हाथ रिक्त हो जाएंगे और भाग्य से भी रिक्त हो जाएंगे। तो ऐसी इतनी बातें हैं, बहुत हो सकती है, पर इसको यहीं पूरा करते हैं। कितनी बातें हुई, फिर से रिवाइज करते हैं। जिनका किनारा छोड़ना है, जिनसे दूर जाना है, जिनके प्रति जो मन में आ सकती है, जो लगाव का भाव है, उसको थोड़ा ढीला करना है। और जैसे ही ढीला करेंगे मन को एकदम शांति मिल जाएगी। पहला बताया आलस, दूसरा बताया बहानेबाजी, तीसरा बताया सुख सुविधाएं, चौथा बताया डिजिटल, उसके बाद बताया पैशन, उसके बाद बताया भोजन, सिंपल हो भोजन, समर्पण भाव से स्वीकार किया गया, उसके बाद बताया गॉसिप्स, झरमोई झगमोई की बातें, व्यर्थ की बातें। एक मुरली में था, यह है कीचड़ पट्टी की दुनिया। कई बच्चे अपने पास कीचड़ पट्टी की बातें रखते हैं और उसमें ही रमन करते हैं, बाप को उन पर तरस आता है। उसके बाद घनिष्ठता, फैमिलियरिटी, उसके बाद पद और धन, भोजन का बोल दिया बीच में। तो अपनी खुद की एक लिस्ट बनानी है कि मैं किस में आ सकता हूं और क्या छोड़ने से मुझे शांति मिली। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं फंसा है, कोई पुराने संस्कार में, कोई व्यक्ति में, कोई वस्तु में, कोई धन में, कोई स्थान में भी फंसा है, कोई किसी पुरानी यादों में, उसको छोड़ नहीं पा रहे, याद को पकड़ के रखा है। वो व्यक्ति कहां चला गया अभी तक, उसको पकड़ के रखा है अभी तक। शांति।
नगाड़ा सुना रहा, करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा, समय बीतता जा रहा। विनाश लीला सुना रही विश्व शिव शक्तियों से स्वर्ग का द्वार खुला रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता